نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير عشر مبشرہ الحمد للہ ہم پہلے چار خلفائے راشدین کے حالات جان چکے آج انشاءاللہ تعالی ہم اگلے عشر مبشرہ میں شامل صحابی ان کے بارے میں پڑھیں گے اور وہی ترتیب رکھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے. آج ہمارے پاس جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. ذرا سا سوچیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ تو بہت سارے کام کرتے ہیں نا اچھے اچھے, تو ان کا تو نام آتے ہی ہم بہت کچھ کہنے لگ جاتے ہیں نا. جیسے ابھی پہلے چار خلفاء کے بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا تو الحمدللہ ہمیں کافی کچھ پتا تھا نا اس کے بارے میں. لیکن اب جو آگے ایک سے ایک شروع ہوں گے, میرا گمان ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں کو سب کچھ نہیں پتا ہوگا. از اٹ ٹرو؟ اور ان سب کے بارے میں جو ہم نے آپ نے پڑھنا سننا ہے نا, اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے کہ کبھی کبھی اللہ بندے سے کوئی ایسی نیکی کروا لیتا ہے جو اس کے عشرہ مبشرہ ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. طلحہ سے بھی ایک ایسی نیکی ہوئی تھی. تھے تو نیک, کرتے بھی بہت تھے, لیکن میدان احد میں اللہ نے ان سے ایک ایسا کارنامہ لے لیا, سر انجام دیا انہوں نے, کہ جس کی وجہ سے زبان مبارک سے ان کے جنتی ہونے کا اظہار ہوا. آئیے دیکھتے ہیں. سسپنس رکھوں گی کہ وجہ کیا ہے, کیونکہ اس دفعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کے حالات زندگی سے زیادہ ان کے وہ وصف ڈھونڈنا چاہتے ہیں. کسی کے بہت سے تھے, کسی کا ایک. تو طلحہ بن عبید اللہ کا نام پانچویں عشرہ مبشرہ میں سے آتا ہے. ابتدائی حالات نوٹ کیجئے گا. قریش کے چھوٹے سے قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے, اور یہ وہی قبیلہ تھا جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک سے زیادہ لقب دیے. نوٹ کریے ذرا ان کے لقب, اسی سے آپ کو ان کے جنتی ہونے کی وجوہات سمجھ آئیں گی. نمبر ایک, الخیر, خیر کہا. اور عرب لوگ کسی کو ایک لفظ میں پکاریں تو یہ ایکسٹریم ہوتی تھی. مثلا جیسے آپ کہتے ہیں نا شیر, میرا بیٹا شیر ہے. ایک کسی کو کہنا میرا بیٹا بہادر ہے, کون سا زیادہ بہتر ہے؟ شیر. یہاں خیر ہے. اللہ کے نبی نے طلحہ کے لیے کہا طلحہ خیر ہی خیر. پھر طلحۃ الجواد, جواد کہا, خوب خرچ کرنے والا, سخی, جنرس. پھر طلحہ الفیاض, فیاضی کرنے والا. اور زندہ شہید, یعنی زمین پہ اگر کسی نے شہید کو دیکھنا ہے تو وہ طلحہ ہیں. ان کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں جا کر, یعنی سکس فور فادر جو ان کے تھے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا. ان کے والد بھی اسلام لانے سے پہلے وفات پا چکے تھے, یعنی آپ کے والد اسلام لانے سے قبل فوت ہو چکے تھے. ان کی ماں کا نام تھا صعبہ, سواد عین با ہا بنت عبداللہ. انہوں نے بھی کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کیا تھا, اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہیں. حضرت طلحہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کو مکہ میں قبل از اسلام بھی لکھنا پڑھنا آتا تھا. پیشہ تجارت تھا. بڑی ینگ ایج میں, یعنی نو عمری میں, شام, یمن اور عراق کی طرف تجارتی سفر کر چکے تھے. بہت اچھے خطیب اور مقرر تھے. قبول اسلام کیسے ہوا؟ کیونکہ اصل میں تو خیر کے اور نیکیوں کے دروازے اسلام قبول کرنے سے کھلتے ہیں نا. تو ابو بکر صدیق کی رغبت سے طلحہ نے اسلام قبول کیا. یہ بتائیے کہ رشک طلحہ پہ آ رہا ہے کہ ابو بکر پہ آ رہا ہے؟ ابو بکر پہ آ رہا ہے. میں سوچتی ہوں قیامت کے دن کتنے لوگوں کے نام اعمال اصل میں ابو بکر کے نام اعمال ہوں گے. چند سیکنڈ اس پہ غور کریں. من دال علی الخیر کفائلہ, جس نے کسی کو خیر پہ ترغیب دی, دلالت کی, وہ کرنے والے کے برابر ہے. ہم کتنے سٹنجی ہو جاتے ہیں, پہلے سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں, فلانے نے نہیں کرنی نیکی, فلاں نہیں سنے گا, فلاں نہیں آئے گا, فلاں ایسا فلاں ایسا. ابو بکر صدیق کی نیکیوں کے پلڑے یاد رکھی اس لیے بھی بھاری ہوں گے کہ ان کی رغبتوں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے, اور جب مسلمان ہوا تو اس کی ہر نیکی ابو بکر کے پلڑے میں پڑی. تو وہ زندگی جیے کہ ہر نیکی میں آپ کا حصہ پڑ جائے, ہر ایک کی نیکی میں. ایمان لانے والے پہلے آٹھ افراد میں سے تھے. اللہ اکبر. اور آپ کے اسلام لانے کا اصل سبب ایک واقعہ بنا, بہت خوبصورت. بصرہ کے تجارتی سفر میں تھے, بصرہ ایک شہر ہے, وہاں ایک راہب ملا. اور راہب کون ہوتے ہیں؟ کرسچین پریسٹ. اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگ مکہ سے آئے ہیں, تو اس نے ایک آواز لگائی اور کہنے لگا, ہے تاجرو تم میں سے کوئی مکہ شہر سے بھی آیا ہے؟ طلحہ بھی وہاں تھے, کہنے لگے میں جلدی سے بولا, ہاں میں مکہ کا تاجر ہوں. کہنے لگے, اب سنیے, اور واقعی لگ رہا ہے کسی ریورڈ کی سٹوری ہے. کہنے لگا, کیا تم میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا نبی ظاہر ہو چکا ہے؟ میں نے کہا احمد کون؟ وہ بولا ابن عبداللہ بن عبد المطلب, اسی مہینے میں اس کا ظہور ہونا ہے اور وہ آخری نبی ہے, اور مکہ میں پیدا ہوگا, پھر یثرب یعنی مدینہ میں ہجرت کرے گا. طلحہ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں میں نے سنی تو مجھے یاد آیا کہ ہاں مکہ میں ایک شخص محمد نام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. میں نے کہا احمد تو نہیں, ہاں محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے. تو وہ بولا ہے نوجوان تو جلدی جا اور اس کے پاس چلا جا. راہب نے پریچنگ کی اسلام کی. یہ ہے اللہ کا کام, اللہ فاسقوں سے بھی لے لے گا دین کا کام. کہتے ہیں کہ اس راہب کی باتوں کا میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے جلدی سے اپنی سواری لی, واپس مکہ پہنچ گیا. گھر گیا اور میں نے کہا اپنے گھر والوں سے, بالکل ابھی شروع کے دن ہے نبوت کے, اور کچھ پہلے سنی تھی نہیں سنی تھی, بس گھر والوں سے کہا میرے بعد کوئی خاص واقعہ ہوا, یعنی بلکہ ان کی یہ بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک کبھی نبی کی نبوت کا دعویٰ عام نہیں تھا, کوئی اناؤنس تو نہیں ہو گیا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ, یہ تو بات سننے سننے میں تھی. کہا میرے جانے کے بعد شہر میں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے؟ میں کہا ہاں ہاں, وہ محمد بن عبداللہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر بیٹھے ہیں. نعوذ باللہ, جیسے ایک ٹون ہوتی ہے نا معاشروں میں. اور تمہیں پتا ہے وہ ابو قحافہ کا بیٹا کون؟ ابو بکر. وہ بھی اس کو مان گیا. اب ٹون میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کے دور میں ہو تو کیسی ہوگی. طلحہ کہتے ہیں اچھا ابو بکر نے ان کو نبی مان لیا؟ میں تو جانتا ہوں وہ تو نرم مزاج بھی ہیں, ہمدرد بھی ہیں, اور بڑی فیمس پرسنالٹی ان کی, خوش اخلاق بھی ہیں, تاجر بھی ہیں. اور کہتے ہیں میں ابو بکر سے بہت مانوس تھا, ان کی محفلوں میں بیٹھتا تھا, وہ قریش کی تاریخ اور انصاب یعنی کون کس کا بیٹا یہ وہ اس سے بہت واقف تھے. کہتے ہیں ان کا نام سنا میں سیدھا ان کے پاس گیا. میں نے کہا یہ بتائیں کیا واقعی محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ ان کے پیروکار بن گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی جو ابھی ان کے ساتھ راہب والی ہوئی, اور اس کے بعد پھر ابو بکر نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ میں کیسے مسلمان ہوا, اور کہنے لگے تم بھی اسلام قبول کر لو. اور پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا, آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی, چند آیتیں تلاوت کی, اور مجھے دنیا بھر کی آخرت کی بھلائی کی اور فلاح کی خوشخبری دی. کہتے ہیں اسی وقت میرا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, اور میں نے پھر آپ کو بھی بصرہ کے حق راہب کی بات سنائی, آپ کے چہرے پہ خوشی آئی, اور آپ نے کہا کہ ایک راہب آپ کی بعثت کی خبر دے رہا. سبحان اللہ, اللہ کو ضرورت نہیں ہے میری آپ کی. جس کے دل کے اندر اللہ نے ہدایت کا بیج ڈالنا ہے اللہ ڈال دیتا ہے. تو کہتے ہیں بس کلمہ شہادت پڑا, مسلمان ہوا, ابو بکر صدیق کے ذریعے اسلام لانے والے لوگوں میں سے میرا نمبر چوتھا تھا. ابو بکر نے جن کو موٹیویٹ کیا وہ فورتھ, ویسے ٹوٹل آٹھ. اور ذرا سوچئے اس دور میں اسلام لانا کوئی آسان تھا؟ ادھر مسلمان ہوئے, ادھر تکلیفوں اور آزمائشوں میں گھر گئے. یاد رکھیے آج بھی آپ شعوری اسلام لائیں گے تو آپ کا خاندان آپ سے ناراض ہوگا, نہیں ہو رہا نا تو گڑبڑ ہے کچھ. اس دور میں بھی یہی تھا, سارا خاندان مخالف ہو گیا, والدہ ناراض. اتنا صدمہ پڑا ان کو بیٹے کے اسلام لانے کا, کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا قوم کا سردار بنے, اور اس میں سردار والی خوبیاں بھی ساری موجود ہیں, اور خاندان والے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے, مارنا شروع کر دیا, تکلیفیں دی, اتنا مارتے. اور کہتے کہ دوسرے تو سو مارتے اپنی ماں ان کو بہت مارتی تھی, لیکن یہ کیسا ایمان ہے, ایک دفعہ دل میں چلا جائے تو واپس نہیں آتا. ام حسب تم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں پہلوں کی طرح آزمایا نہیں جائے گا؟ اور سورۃ عنکبوت آیت نمبر ایک میں کیا آتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے صرف یہی کہنے پہ کہ تم مسلمان ہو اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا, شومی گوئم لا الہ الا اللہ بل ارزم کے دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. मैं खुद को मुसलमान कहते हुए डरता हूँ, लरसता हूँ, शेख शिवरिंग, क्यों? कि मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुश्किलात क्या आती हैं। हमें नहीं आती ना, इसीलिए हमें छोटे छोटे इस्लाम के इशू ही बड़े मुझ चुभते हैं। ज़रा सोचिए अगर आज हमें इस्लाम कबूल करना पड़े और सारे ख़ानदान की, सारी सोसाइटी की मुखालफत सारे ले आए इस्लाम, हम भी खुशी खुशी ले आएंगे। सारी दोस्तें काम करें, हम भी कर लेंगे। सारी कजन्स एक नेकी करें, हम भी करेंगे। असल बात है कि अपोजिट द विंड्स, अगेंस्ट द टाइड्स, असल इस्लाम का ये मिजाज है। और जब ईमान दिल में आता है तो खटकता नहीं। और आप कहते हैं ये इनकी उम्र कितनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने छोटे थे? 23 ईयर्स छोटे थे, आधी उम्र थी। तब नबी सल्लम 40s में थे ना, और ये आपकी देखे आधी उम्र थी, लेकिन यंग बच्चे को बात समझ आएगी, बड़ों बड़ों को ना आई। और फिर इन्होंने इस्लाम के लिए मक्का के दौर में तो कुर्बानियां दी और तकलीफें सही। यानी आप देखिए ना, सिर्फ 8 लोग, तो उनपे तो तकलीफों के पहाड़ टूटे ना। कह लीजिए कि मक्का में इनको इस्लाम की वजह से मारें खानी पड़ी, और अपनों का गम सबसे बढ़कर। और मदीना में आने के बाद गजवात, इन्होंने भी सिवाय गजवाए बदर के सारे गजवात में शिरकत की। वहां क्यों ना गए, उसकी भी वजह थी। आप और हजरत सईद बिन जैद, उनका भी किस्सा आगे पढ़ेंगे। नबी सल्लम ने इन दोनों को कुरैश के काफिले की खबर लेने के लिए भेजा था, इसी काफिले के लिए जो अबू सुफियान का था। देखो, लेकिन काफिला चूंकि रास्ता बदल के जा चुका था, तो जब ये खबर लेकर वापस आए तो इस दौरान गजवाए बदर हो चुकी थी। इस वजह से अब आप देखिए, क्या ये बदर के इस सवाब से महरूम रहे? इनकी ड्यूटी मैदान जंग में नहीं लगी। बस हम कहते नहीं, सामने होंगे तो बात बनेगी। नेकी ले लीजिए इज्तमाइयत में, फिर उसके बाद आपको सामने बिठा दें, पीछे बिठा दें, नीचे बिठा दें, जूतियां सीधी करा लें, बच्चों को खिला लें, रोटी पकवा लें, आपसे पढ़वा लें, सब बराबर है। क्योंकि एक छोटी सी तार के बगैर भी गाड़ी नहीं चलती। आप वो तार बन के किसी इज्तमाही जगह पे लग जाए, आप तर जाएंगे। सहाबा की यही नेकियां थी, इन्होंने अपनी मर्जी के साथ नेकियां नहीं की। और ये सबसे मुश्किल होता है, बंदा खुद नेकी कर सके और ना करे, बहुत मुश्किल होता है। और अल्लाह के नबी के सहाबा की ये खूबियां थी। फिर आप देखिए कि आप गजवे बदर में शिरकत नहीं हुई ना, तो गम करने लग गए। हमारा हाल क्या, हम गम करते, रोया करते थे, हाय मैं बदर में शरीक क्यों ना हुआ, और उसकी तल्लाफी में वो किया जो इनको अशरे मुबशरा में शामिल कर गया। गजवे उहद हो गई, एक ही साल के बाद बहादरी और जान निसारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहला राउंड तो सबको पता है गजवे उहद का, बहुत पहला पसपा हुए थे। कब? जब जगह छोड़ दी दर्रे की। नबी सल्लम के साथ सिर्फ 12 लोग रह गए, 11 अलैमन अंसारी और एक मुहाजिर। और आपको पता है मुहाजरीन में जो एक शख्स बाकी रह गया वो कौन था? वो हजरत अल खैर। बाकी सारा इस्लामी लश्कर बिखर गया, और अल्लाह के नबी इस 12 लोगों के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे, और मुशरिकीन का एक दस्ता आपको शहीद करने के लिए पहुंच गया। ये था वो नाजुक मौका जब अल्लाह के नबी ने कहा, तुम में से कौन है जो इन मुशरिकीन को भगाए, वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। ये बात सुन के तलहा बोले थे कि मैं हम कहते उसको कह दें, ये उसका काम है। सम वन विल डू, नो वन हैव डन। अपनी तरफ उंगली लाएं, मैं कर सकता हूँ। कहा अल्लाह के नबी मैं करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, तुम अभी रुके रहो। देखिए डिसिप्लिन है, दीन का काम डिसिप्लिन के बगैर करेंगे निरी दौड़े हैं, निरी खप है, रिजल्ट्स कोई नहीं होंगे। आप खुश होंगे, आपको अजर मिलेगा, आपको सवाब भी मिलेगा, फायदा भी होगा, लेकिन वो फायदा नहीं होगा जो समा और तात के साथ होगा। यही हुआ। आपकी बात अंसार में से भी एक शख्स ने सुनी जो 12 में से 11 में से 1 था, कहने लगा अल्लाह के नबी मैं जाऊं। देखिए क्या उनकी स्पिरिट क्या थी। आपने फरमाया हाँ तुम आगे बढ़ो और मुकाबला करो। अब जरा रुको, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर दी अल्लाह के नबी ने? तलहा को नहीं जाने दिया क्योंकि अपने थे, मक्का से साथ आए थे, मुहाजर थे, और अंसारियों को कहा जाओ चले जाओ, कुछ हुआ तो तुम्हें हो, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसे दिल नहीं होते ईमान वालों के। खैर वो अंसारी आगे गया, बड़ी बेजिगरी से लड़ा, लेकिन बड़ा मामला सख्त था, शहीद हो गया। अल्लाह के नबी थोड़ा सा और ऊपर गए पहाड़ी के ऊपर, और मुशरिकीन ने और भी पीछा किया, और करीब हो गए ना, जितना पहाड़ के ऊपर जाए पहाड़ छोटा होता जाता है ना। अब दुश्मन बिल्कुल नबी सल्लम के करीब आ गए थे। आपकी फिर एक कॉल थी, कौन है जो इनका मुकाबला करे? तलहा नाराज नहीं हो गए होंगे? नहीं नाराज हुए। कहा अल्लाह के नबी मैं करूं? कहा नहीं, अभी भी बैठे रहो, अभी भी नहीं करना तुमने, अभी तुम नहीं। फिर अंसार में से एक और बोला, अल्लाह के नबी मैं? कहा हाँ तुम जाओ। वो भी गए और वो भी मुशरिकीन से लड़ते हुए शहीद हो गए। बारी बारी 11 तमाम अंसारी जामे शहादत नोश करके। और आपको पता आखिर में अल्लाह के नबी के साथ कौन रह गया? तलहा रह गई। ये मुकाम ढूंढे हम जिंदगी में, ये अचानक नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने पहले से देखा होता दिलों को। ये कोई नहीं कि अल्लाह मेरे आपसे मरने से पहले ले ले। और फिर वही हुआ, दुश्मन है अल्लाह का रसूल और एक दिफा करने वाला तलखा। और नबी की क्या सेंस थी, क्या हिकमत थी, अगर पहली दफा में तलखा को भेजा होता खत्म हो चुके होते, आप क्यों नहीं थे उनको दे मौका दे रहे? आपको तलखा की बहादुरी का यकीन था, ये अकेला भी रह गया ना ये कुछ कर लेगा, ये बाकियों ने जाना है, इनको नेकियां मिलने दो। और फिर यही हुआ, हजरत तलहा ने अल्लाह के नबी का उस दिन जो दिफा किया, मैं कहती हूँ जब भी गजवे उहद पढ़ाती हूँ मैं सोचती हूँ, उस दिन एक तलहा ने रसूलुल्लाह का दिफा किया, आज 2 बिलियन मुसलमान दीने रसूल का और उम्मते रसूल का हक नहीं अदा कर पा रहे। अगर उहद में नबी को कुछ हो जाता ना, इस्लाम की तारीख बनते हुए मिट जानी थी, ये सिर्फ एक तलहा का कारनामा है। आज हम इतने होकर नबी के लाए हुए दीन को नहीं बचा पा रहे। और हालत क्या थी, नबी के दांत शहीद, पेशानी पे खून, होंठ जख्मी, जरा अपने ऊपर ले हाँ, अपने बाप की तसव्वुर कर लें, छोड़ें दूसरों को। हमारे दिलों में नबी की वो मोहब्बत ही नहीं है, वो एहसास ही नहीं है कि तुम्हारा तो ईमान ही नहीं पूरा उम्र जब तक तुम्हें मैं तुम्हारी जान से भी ना प्यारा हो जाऊं। हम मुंह से तो बड़ा कहते हैं आशिकाने रसूल और मोहिब्बाने रसूल, जरा सोचिए आपके बाप का दान टूटे एक जंग में, खून पेशानी से निकले, होंठ जख्मी हो और थकन और जख्म इतने कि आपने ढाल। और ऐसे सूरत में फिर अबू हजरत तलहा दुश्मनों पर ऐसे हमले कर रहे हैं कि उनको धकेल रहे हैं, ऐसे पीछे कर रहे हैं, और वापस आके नबी के सामने खड़े हो जाते थे। जिधर से हमला आता नबी सल्लम के सामने होते, और साथ ही साथ पीछे पीछे आपको सहारा देते हुए पहाड़ी पे चढ़ने की रग़बत दिला रहे हैं। कभी किसी ओट में पहाड़ी का एक गहरा सा खाई होती है ना, उसमें अल्लाह के नबी को बिठा देते कि आप इधर बैठ जाइए, पीछे से कोई नहीं आएगा, आगे मैं खड़ा हूँ। और कई दफ़ा ऐसा हुआ आपको होता है कि मुसलसल कशमकश में हजरत तलहा ने बिल आखिर मुशरिकीन को वापस भेज दिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं और अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो, यानी अबू उबैदा बिन जराह, मैं और अबू उबैदा बिन जराह नबी सल्लम से बहुत दूर थे। जब हम वहां पहुंचे और अल्लाह के नबी की मरहम पट्टी करने लगे, तो आपने फरमाया मुझे छोड़ दो, अपने भाई तलहा की खबर लो। और हजरत तलहा की यह हालत हो चुकी थी कि जिस्म पर नेजों और तलवारों के 70 से ज्यादा जख्म थे, एक हाथ कट चुका था और एक घड़े में बेहोश गिरे पड़े थे। गज़वे उहद के बाद अल्लाह के नबी कहा करते थे, जो शख्स किसी जिंदा शहीद को देखना चाहे वो तलहा को देख ले। और अबू बकर कहते हैं उहद की लड़ाई तो तलहा की लड़ाई थी, उसी के सर कामयाबी का सेहरा है। आज आपको शायद पहली दफा पता चला होगा कि अगर उहद में बाद में शिकस्त नहीं हुई और दुश्मनों के बकौल नबी सल्लम फौत हो गए, ये बात झूठ थी, तो उसके पीछे सिर्फ एक शख्स था जो दिफा कर रहा था और वो तलहा थे। और अगर उस दिन तलहा गायब होते, छुट्टी पे होते, मजबूर होते, कोई शादी होती, कोई ब्याह होता, मौसम की शिद्दत होती, सर्दी गर्मी होती, तो क्या नतीजा निकलता? याद रखिए, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अपने आप को हमेशा वो शख्स समझिए कि जिसके लिए शरीयत आई, जिसके लिए ये सब कुछ, आप वो स्टूडेंट समझें अपने आप को जिसके लिए ये स्कूल बना। अगर मैं ना गई तो सब खत्म, और आप अपने आप को वो अंसारुल्ला बनाएं फ्यूचर में कि मैंने इस सारे स्कूल को चलाना है, फिर आप काम करेंगे। जहां सेकंड थॉट आई, आप पीछे कोई और आगे, ये अल्लाह की सुन्नत है। मैं आज यहां अपने लिए ये सोच लूं ना, तो कल मुझे तो अल्लाह इधर नहीं बिठाएगा, आप तो कोशिश करेंगे, मैं नहीं आ सकूंगी। ये वो जिसको पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं धक्कमशाही, ये थक्के दार दे के अपने आप को आगे लाना पड़ता है। इधर अल्लाह ऐसे नहीं लाता, कभी पूछें तो सही, जो इन जगहों पे बैठते हैं वो कितनी मन्नतों और मुरादों से बैठते हैं। ये आसान काम नहीं है, आपको बहुत ग्लैमरस लगता होगा, उस्ताद उसका बस्ता कोई उठाता है, चादर उठाता है, ये अल्लाह की कसम ये तो बहुत साइड की बातें हैं। इससे पहले जो रुसवाई और जो ह्यूमिलेशन, कहते हैं ना कि बंदे को पहले हम्बल बनना पड़ता है, इज्जत लेने से पहले, ऑनर बाद में मिलती है, ह्यूमिलिएशन पहले होती है, पहले आपको किसी के साथ करना पड़ता है, फिर कोई आपके साथ करता है। ये अल्लाह की शान है, आप एक करें तो अल्लाह आपको 7,000 दे दे, 70,000 दे दे, वो कान अल्लाह शाकिरन अलीम है, सिर्फ अल्लाह आपको काम देता है। मैं खुद कह सकती हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ बैठने का मौका ना दिया तो अल्लाह की कसम मैं कभी ना बैठती, मुझे कभी कोई ना बैठने देता। पता नहीं अल्लाह को किसकी कोई दुआ बात लग गई कि उसने मुझे कुरान के लिए यहाँ बिठा दिया, आपको दीन इस्लाम सिखा रही। आप सोचे तो सही कि मैं अपने ऊपर लूँ तो मुझे रोना आ जाए, मैं इस वक्त कुछ और पढ़ा रही होती, क्या मेरी आपकी ये शांति इतने अच्छे बन के हम यहाँ बैठ जाए। और आप कैसे बैठ गए इधर, कभी आपने सोचा? जाके ढूंढिए वो दुआ जो आपको लगी, आपकी नानी दादी किसी की, कभी आपकी दादियों ने दुआएं करी होंगी, आप पैदा भी नहीं हुई होंगी, और कभी किसी ने बचपन में आपको दुआ दी होगी। अपने लिए दुआएं लेने वाले बने, ये दुआएं लेकर आती हैं आगे। और हकीकत है कि ये वक्ता और तलहा जो हैं वो ओहद से लेकर तबूक तक पहुंचे। तबूक का मौका भी सुन लीजिए, चंद मिनट ले लूं पर। गजवे तबूक के मौके पे एक यहूद था, उसका नाम था सुएलम, सीन वाव या लाम मीम। इसके मकान पर मुनाफिकीन जमा होते थे, फिर मुसलमानों को जिहाद से रोकते, बद दिली और इंतशार फैलाते। याद रखिए, ये भी एक दुश्मन का वार है कि नेकियों से रोकना। नबी सल्लम ने हजरत तलहा को हुक्म दिया कि इस फितने को खत्म कराओ। हजरत तलहा अपने साथ चंद सहाबे कराम को लेकर इस यहूदी के मकाम पर पहुंच गए, उसका घेराव किया, उसे आग लगाकर मुनाफिकों की साजिशों का अड्डा तबाह कर दिया। यानी एक तलहा, मैं तो हैरान हो रही हूँ हल्का हजरत तलहा को पढ़ाते हुए, कि इनको किसी टीम की जरूरत नहीं थी, इनके अंदर ईमान इतना था, असल बात इताअत थी। याद रखिए, ये हजरत इब्राहिम की भी खूबी थी ना, काना उम्मतन सूरत नहल। इताअत और समौतात के साथ बाज दफा एक बंदा पूरा सिस्टम चला लेता है, और इनके अंदर वही दिख रहा है। और हजरत तलहा को अल्लाह के नबी ने जहां भी भेजा, ये कामयाब लौटे। हज्जतुल विदा तक में नबी सल्लम के बिल्कुल साथ जो शख्स था वो तलहा था। खुलफाए राशिदीन का दौर आता है, चारों खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली के जमाने में हजरत तलहा ने बैत की थी, और जंगे जमल के मौके पर शहादत हुई। कल पढ़ा ना, शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 64 64 ईयर्स थी। कहाँ पे बात शुरू हुई, एक राहिब की रगबत तरगीब के साथ इस्लाम में आए और एक जंग में जाकर शहीद हुए। ये नेकियों का सफर है। इसके बाद रदी अल्लाह अन्हु व रदुवन, इसके बाद है कि तलहा बिन उबैदुल्ला फिल जन्ना। और आपका हुलिया मुबारक क्या था, कभी आपने अभी तक, बात तो खत्म हो गई है, शक्ल सूरत सुनी, रंग डंग कपड़े जूते गाड़ी कौन सी थी, ब्रांड कौन सा पहनते थे, हु केयर्स। रंग गंदमी था, कद आम मर्दों के कद से छोटा था, नाक बारीक और खूबसूरत थी, दाढ़ी के बाल घने थे, बहुत तेज चलते थे, और बुढ़ापे में भी इनके बाल सफेद नहीं हुए। कहते हैं कि इनको देखकर इनके जिस्म पर बुढ़ापे का असर नहीं दिखता था। मुख्तलिफ औकात में 7 औरतों से निकाह किया, यके बदीगरे 11 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी अपने पीछे। फजाइल और अखलाक क्या थे, मुत्तकी, लफ्ज लिख लें बस, बाकी डिस्क्रिप्शन आपको आती हैं। फैयाज, नबी सल्लम को इनसे शदीद मोहब्बत थी। देखिए जुमला मैंने क्या बोला, शदीद मोहब्बत, किससे, नबी सल्लम से, तो नबी को इनसे होगी जी। बहुत मालदार थे, अल्लाह अकबर, नेक मुत्तकी शख्स मालदार, तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, ये कैसे पैसे वाले हो सकते हैं। ये आज हमारा सुतेलापन है दीन के साथ, हम कहते दीनदार अमीर नहीं हो सकते, तौबा करो, ये अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, ये अच्छे खाने नहीं खा सकते, और लैंड क्रूजर ये तो मुनाफिकों के और काफिरों के लिए बनी, नऊज़ुबिल्लाह, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। इतना माल था लेकिन अपना माल बेदरेग अल्लाह की राह में खर्च करते थे, गरीबों यतीमों बेवाओं जरूरतमंदों पे, और अपने कबीले के गरीब लोगों की माली इमदाद करते, और ख़ास तौर पे नए मुस्लिम, न्यू मुस्लिम्स, उन पर दौलत खर्च करते, कर्जदारों का कर्ज दूर करते, उनकी मदद करते। एक शख्स सबीहा तमीमी 30,000 दिरहम का मकरूज था, 30,000 दिरहम और चांदी के सिक्के, सारा कर्ज आपने अकेले ने उतार दिया। घर में माल जमा करके रखने को नापसंद करते थे। मैंने तो कहा था आपको इनकी खूबियां ही लिख लें, ये खूबियां जन्नत में ले जाने वाली। और लोगों को कसरत से तहाइफ भी देते थे, हजरत आयशा को हर साल 10,000 दिरहम भेजा करते थे। आपको था कि नबी सल्लम के बाद आपकी अजवाज का ख्याल किसने रखा, अस्हाबे रसूल ने रखा। ज़िल क़िर्द में पानी का एक चश्मा था इनका, हजरत तलहा ने भारी कीमत अदा करके खरीदा हुआ था, आम मुसलमानों के लिए इसे वक्फ किया। और आपको था जब फौत हुए तो क्या छोड़ा, हम कहते हैं हाय ओहद वाले दिन तो तलहा ख़त्म ही हो जाते, हो गए होंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप अल्लाह के रास्ते में निकलें और आप ख़त्म हो। दुनिया से गए 20 लाख दिरहम और 2 लाख दीनार का तरका छोड़ कर गए, इतनी दौलत थी। लेकिन मालदार होने के बावजूद सादा मिजाज, सादगी से रहते, सादा गिजा खाते, और दस्तरखान किसके लिए वसी था, मेहमानों के लिए। राहे हक में बड़े बेखौफ और बेबाक थे, हक गोई सच बोलना और शुजात और सखावत में यकता थे। और और आगे हम पढ़ेंगे एक और सहाबी ज़ुबैर बिन अवाम, उनमें और इनमें बड़ी मुमासलत थी। दोनों इस्लाम कबूल करने से लेके फौत होने तक बिल्कुल ऐसे स्लो एंड स्टडी चलते रहे। दोनों की उम्र भी बराबर थी, एक ही दिन इस्लाम कबूल किया और हर जंग और गजवे में भी इकट्ठे रहे। हाँ, बदर में आगे हम पढ़ेंगे तो बताऊंगी, लेकिन इनको ओहद का कहा ना कि यौमे तलहा, तो बदर यौमे जुबैर था। वो कैसे था वो आपने भी नहीं सुना होगा, जब हम उनके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त हम पर्सनल लेवल पे साहबा को पढ़ रहे हैं। बहरहाल दोनों ही जंगे जमल में शहीद किए गए थे। चूंकि इनका मिलान दूसरी चीजों में था तो इल्मी मैदान में कम है। 38 ओनली 38 अहादीस इनसे मरवी हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स ऐसे शख्स को देखना चाहे कि जिंदा शहीद हो, तो वो तलहा बिन उबैदुल्ला को देख ले। ये है इनका जुमला जिसकी वजह से इनको अशरे मुबशरा में शामिल किया। कम अज कम 5 सेकंड खामोशी से अपने दामन में झांकू मैं भी, क्या मेरे अंदर तलखा वाली खूबियां हैं? अगर राहिब की बातें मैंने सुनी होती तो मेरा क्या रिएक्शन होता? क्या इस्लाम लाने पर जो तकलीफें तलखा को मिली मुझे मिली होती अपने खानदान से, तो क्या मैं पलट ना जाती? और मैंने जो ओहद के दिन तकलीफ तलखा ने सही, अगर मेरे साथ वो होती तो क्या होता? और अपने हाथ पे रहते रहे, अभी तो नहीं सुनाया आपको, आपको पता है कि एक हाथ क्यों शल हुआ था? हैंडीकैप हो गया इस हाथ के ऊपर तार तीर लिए, ढाल तो टूट गई ना, तो अल्लाह के नबी क्या अपना हाथ करते थे और हाथ में छेद, पूरा हाथ छेदो छेद हो गया था। पहला छेद तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, दूसरा कैसे हुआ? हम तो कहते हाय मैं मर गई, फिर ना आगे आएंगे। एक नेकी में जरा सी तकलीफ तो हो। और याद रखिए, ये वो लोग थे उस वक्त चुस्त होते थे जब लोग सुस्त हो जाते थे, ये उस वक्त सखी होते थे जब लोग माल पीछे कर देते थे। मैं इन शख्सियात के बारे में जितना भी सोचती हूँ तो मैं हैरान जी होती हूँ कि इनको तो दुनिया में पता भी चल गया था कि हम जन्नती हैं, फिर भी इनका अमल क्यों नहीं रुका? ये फिर भी मजीद नेकियां क्यों करते रहे? मसलन अगर हजरत उस्मान को गजवाए तबूक के मौके पे 9 दफा जन्नती होने की खुशखबरी मिल गई, तो आई थिंक सो कि हजरत उस्मान को फिर वहां रुक जाना चाहिए था नेकियां करने के लिए। मेरा क्वेश्चन समझे, फिर जवाब देना है आपने। ये क्यों नहीं रुकते थे जन्नत की खुशखबरी पाने के बावजूद? जब नेकी किसी प्लस माइनस के साथ की जाती है, सवाब ये पढ़ लो जन्नत का ये महल, वाइट मोती का महल, उसकी इतनी खिड़कियां दरवाजे, तो ये तो फंक्शनल नेकी है। नेकी उनके खमीर का हिस्सा बनी हुई थी। ठीक है, रगबन व रहबन, मोमिन रगबत और रहबत दोनों से पुकारता है, यदून और रब्बकुम। अपने रब को कभी जन्नत की तलब के लिए पुकारो, कभी जहन्नुम के खौफ से बचो, लेकिन इसके बावजूद मोमिन को आदत होती है नेकी करने की। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी की अचानक नेकी पे उसको जन्नत का खबर नहीं मिलती, मुस्तकिल नेकियां मिजाज का हिस्सा बन चुकी थी। और दूसरी बात यह है कि आज अल्लाह ने फैसला दिया, कल बदल भी तो सकता है। साहबा को इस बात का भी तो यकीन था ना कि अगर आज जन्नती हैं लेकिन अभी तो जिंदा, जैसे जैसे आज आप साफ सुथरे हो गए लेकिन अभी आप जिंदा हैं, आप फिर भी गंदे हो सकते हैं। तो हमेशा अपनी नेकियों के अंदर ये सोच रखा करें कि एंड। और एक और चीज़ नोट कर लें कि जब तक एंड अच्छा नहीं होगा बात नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक बंदा हमेशा अच्छे काम करता है हत्ता कि उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ थोड़ा सा फासला रह जाता है, लेकिन उसकी तकदीर गालिब आती है और वो कोई बुरा काम करता है और उसकी वजह से वो जहन्नमी हो जाता है। और इसका अपोजिट भी है, एक शख्स सारी ज़िंदगी गुनाह के काम करता रहता है और उसके बाद फिर वो उस के अंदर से गलत काम करके उस तीस चीज़ में चला जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हमने हज़रत तलहा के बारे में पढ़ा था। आम तौर पे देखिए, जो अशरा मुबशरा में जो शुरू के 4 सहाबे हैं उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा होता है, लिहाजा उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को पहले से जान रहे होते हैं, तो वो एक रेपिटिशन है। लेकिन मैं जो तलहा के ख़ास तौर पे वो जो अपने हाथ पे तीर खाने की बात सुन पड़ती रही, मुझे बाद में भी याद आए, क्या हम भी नबी सल्लम के दिफा में इतने आगे जा सकते हैं? और आपको पता है कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने हकीकत में इस्लाम की तारीख बनाने में अपना हिस्सा अदा किया, किरदार ऐसा था। और चंद बातें नोट कर लीजिए हजरत अल्हा के बारे में कि अल्लाह ताला ने इनको जो खुशखबरियां दी थी वो किस कितनी बड़ी दी थी, और इन सारी खुशखबरियों के ये वाकई मुस्तहक थे। इनका अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह लीजिए कि तस्करा किया था, तो वो इनकी कुछ आदात की वजह से था। पहली बात देखिए कि तलहा के मतलब क्या है, मैं आपसे ही पूछती हूँ। कुरान पाक में तलहा का या कुछ इससे मिलता हुआ लफ्ज़ आया? चले आप इस नाम का मतलब ढूंढाइए ना, बस कहीं से भी मिल जाए आपको। फिर आप देखिए कि गज़वे अहद कब हुई थी, हज़रत अल्लाह उस वक़्त किस उम्र में थे, उम्र देखिए कि नहीं है उनकी उम्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने छोटे थे, तो अल्लाह के नबी की उम्र मुबारक क्या थी अहद के मौके पे, 40+13+3 करें कितनी हुई, तो ये कितने होंगे लिखिए 22 ईयर्स के, हमारे 22 साल के बच्चों की क्या आदत है। आप तलहा की जगह अपने बच्चे का नाम लिखें। अमूमन आज उम्मत के बच्चे यंगस्टर्स उनकी क्या आदत है, 22 साल का बच्चा 22 ईयर्स ओल्ड बॉय, क्या आज उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है कि उनके लिए अपने हाथ पे जख्म खा सके, और क्या अल्लाह के दीन के साथ इतना प्यार और फहम है कि उस दीन के दिफा के लिए अपनी जिंदगी की बाजी भी हारने के लिए भी तैयार हो जाए। हर एक को अपने ऊपर लेकर इसको सोचना है, कितने ही लोग ऐसे कि जो हकीकत में आज अपनी जिंदगियों को सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों के अंदर ये रूहें पैदा करें। और ख़ास तौर पर ये जो स्टोरीज हम पढ़ते हैं इसको सुनाएं। आपको पता है कि हज़रत तलहा जब मैदान उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे थे ना, 24 जख्म सिर्फ उनके हाथ पे लगे थे, और पूरे जिस्म पर नेजे तलवार और तीर के 75 जख्म थे। 75 जमा करें, 75+24 कितने हुए, और सर के ऊपर एक जर्ब लगी थी। पहला जख्म जब लगा होगा तो चोट आई होगी ना, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चोट लग गई, पीछे क्यों नहीं हटे। फिर दूसरा, यानी 75+24 और तलवार का पड़ गया तो 100। मेरा सवाल यह कि 100 जख्म कैसे खाए, अंदर किसी ने ईमान ऐसे रचा बसा दिया होगा ना कि 100 दफा भी ये चीज उनको पीछे नहीं लेके जा सकी। जरूरत इस बात की कि ये ईमान डालें। और आपको पता है कि हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हो की रोज की आमदनी कितनी थी, 1000 दानी, और दानी एक सिक्का होता है जो दिरहम के बराबर है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अल्लाह ने इनको इतना माल दिया। सुना चुकी हूँ ना कि कैसे आपने माल में से अल्लाह के नबी के अज़वाज को भी देते थे, लेकिन असल बात यह है कि मैदान जंग में नहीं को मरता, मरता अल्लाह के हुक्म से है। और आप नोट करेंगे कि जब इन लोगों की हम कहानियां पढ़ते हैं ना, तो हमारा अंदर से खून जो है वो गर्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि हम इन लोगों से सीखने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला आपको मुझे इन लोगों के नक्शे कदम पे चला दे, और अल्लाह ताला हमें इनमें से किसी एक जैसा भी बना दे। देखे जैसे सितारे हैं ना, कुछ बड़े कुछ छोटे, किसी की ज्यादा रोशनी किसी की कम, तो सहाबा कराम को भी सितारों से तशबीह दी गई है। और हकीकत यह है कि अल्लाह करे कि हम वैसे ही बन जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।